Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Desh kal vastu chhut jayegi to vah usko mrityu samajhta hai. Moksh ko hi vah mrityu samajhta hai. जो अमृतत्व है उसको ही वह अभाव समझता है। आप एकांत में बैठ के श्रवण मनन आपका पक्का है, मान लो। अब आप कहा कि बार बार देहात्म भाव आ जाता है तो हम निधिध्यासन करते हैं, विपर्यय। तो विपर्यय के लिए निधिध्यासन करते हैं। तो जब निधिध्यासन करते हैं, ध्यान की इच्छा, निध्यासा, सा में इच्छा लगी हुई है, तो इच्छा उसमें भी वही सा लगा हुआ है। तो कहा कि अमृतत्वम इच्छन, इच्छा लगा है ना। तो कहा कि वहां जब वो उसके लिए उस सत्य को के अनुसंधान में वह लगा हुआ है तो उसको लगता है अरे कहीं प्राण तो नहीं रुक गए। सबका अनुभव होगा, कहीं प्राण तो नहीं रुक गए, शरीर मर तो नहीं जाएगा, तो मोक्ष से ही डरने लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत साधना करते हैं और आके बोलते हैं कि महाराज आपने तो मंत्र बता दिया और कहा जप करो ध्यान करो, लेकिन जब ही हम जप करते हैं, आपको सच्ची बात बता रहे हैं, बनावटी नहीं, कहा जब ही हम जप करते हैं हमारे घर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। वो क्या है, वो उन्होंने, क्योंकि अब क्या है, नदी जो बाहर की ओर प्रवाह चल रहा है, पराग की ओर चल रहा है, उसको प्रत्यक की ओर लौटाना है, उसमें उन्हें रुचि नहीं लगती है क्योंकि धीर नहीं है। तो इसलिए उनका, उनकी बुद्धि, उनका मन कुछ ना कुछ ऐसे बहाने निकाल लेता है। जैसे इस देश में महाभारत एक बृहत ग्रंथ है, तो बोला महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत होगा, घर में कला होगी। अब कला तो आप अपने स्वभाव से करते हैं, उसका महाभारत के ऊपर क्यों आरोप करना। वो बड़ा ग्रंथ है, उसको पढ़ते रहते हैं, उतने में स्वभाव के कारण कुछ न कुछ झगड़ा होता है तो उसका अध्यारोप महाभारत के ऊपर। तो महाभारत नहीं पढ़ते तो झगड़ा नहीं होता। अब क्या पुस्तक ग्रंथ भी नहीं रखते, दे देते हैं, ले जाओ इसको, आप ले जाओ महाराज। तो ग्रंथ भी नहीं पढ़ते तो क्या झगड़े नहीं होते हैं, क्या न्यायालय हमारे बिना झगड़े के हो गए। सिविल वाले जो होते हैं ना, सिविल झगड़े आपस के, तो उससे रहित हो गए क्या, नहीं हुए। झगड़े फिर भी होते हैं, मर्डर वो क्राइम फिर भी होता है। तो इसलिए क्या है कि हम कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेते हैं और वो समस्त बहाना बाह्य दृश्य को लेकर होता है क्योंकि हम धीर नहीं है, अतृष्णा हमारे साथ लगी रहती है। तो छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ते रहते हैं। कल आपको सुनाया था कि आप जब ब्रह्मांडों का भी विचार करते हैं, वह भी छोटी चीज का ही विचार है। भले आप कहें कि हमारी तो बुद्धि समष्टि में जाती है, हमारी एक साधिका है हमारे पास, तो बोलेगी वो उसकी बुद्धि तो समष्टि में रहती है। तो समष्टि में बहुत अच्छी बात है, समष्टि में रहे, आप राष्ट्र का चिंतन करें, कम से कम छोटा छोटा जो घर गृहस्थी का, घर घरौंडे का चिंतन है, उससे तो आप छूटेंगे, आपकी बुद्धि विशाल होगी, बड़ी होगी। आप धर्म का चिंतन करें, लेकिन यहाँ उसको भी हटाया जा रहा है, उसको भी यहाँ छोटा किया जा रहा है। यदि उसी में आपकी बुद्धि यदि किसी प्रादेशिक, दैशिक, मजहबी, सांप्रदायिक, राष्ट्रीय, ब्रह्मांडीय इन सब चिंतनों में धसने लगेगी तो वह आत्मविचार नहीं करने लगेगी, नहीं कर सकेगी। जातीय, वैयक्तिक इनके चिंतन को तो छोड़ ही दीजिए। तो किसी बहिर्मुखता का बुद्धि में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए, तब आप अंतर वस्तु आपको समझ में आएगी। और इसका आप अकेले में बैठकर देख सकते हैं कि आपकी बुद्धि क्या सोचती है, कहां जाकर बैठती है, किस चीज का यह विचार करती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे के मंत्र में चलें। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं यहाँ जब संगति लगाते हैं आगे के मंत्र से, तो कहते हैं कि जो अविद्या से सब कुछ दिखाई पड़ता है वह सब उससे दृष्टि हट जाना चाहिए, नहीं तो तृष्णा हमारी बनी रहेगी। और अविद्या और तृष्णा से यह बंधा हुआ है, इस कारण से आत्मदर्शन, क्योंकि वो तो आपका आत्मा ही है, कहीं दूसरे काल में जाकर नहीं ढूंढना, दूसरे देश में जाकर नहीं ढूंढना, किसी दूसरे व्यक्ति में जाकर नहीं ढूंढना, फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं, तो यह जो प्रतिबद्ध आत्मदर्शन है इसका अविवेकी और विवेकी का अंतर बताते हुए कहते हैं, पराचह कामान अनुयंती बालाहा ते मृत्योर्यंती विततस्य पाशम। बहुत सुंदर मंत्र है। तो कहा अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। तो क्या पराचा कामान अनुयंती बालाहा, जो बालक हैं, अब आप विचार कर लेना कि प्रौढ़ कौन है और बालक कौन है। कहा जो बालक हैं वो बाहर के विषयों की ओर बाह्य भोगों के कामान से भोग ले लेना, पराचा कामान अर्थात बाह्य भोग उनकी ओर दौड़ते रहते, उनका पीछा करते रहते, तृप्ति नहीं होती, हाथ नहीं आते हैं वो भोग, लेकिन उनका पीछा करते रहते हैं। पराचा कामान अनुयंती बाला, और परिणाम में क्या बोलते हैं, ते मृत्योर्यंती, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु का विततस्य पाशम, उसका बहुत बड़ा, मृत्यु का जो सर्वत्र फैला हुआ पाश है वह पाश में वो पड़ जाते, जैसे मछली पाश में फंसती है, जैसे चिड़िया पाश में फंसती है, वैसे यह मनुष्य इस मृत्यु के पाश में फंस जाता है। मृत्यु अर्थात परिवर्तन, अभी बोला था सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, तो मृत्यु अर्थात परिवर्तन, तो एक के बाद एक परिवर्तन में हम फंसे रहते हैं। और धीरा अथ धीरा, किंतु जो विवेकी है, धीर अर्थात यहाँ विवेकी लिया गया, जो विवेकी पुरुष है वह अमरत्व को, ध्रुव को, निश्चल तत्व को जानकर अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, यहाँ क्या कहा, उसको उसने जान लिया, ये धीर है, तो विदित्वा ध्रुवम, और वह कैसा है, ध्रुव शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। तो अध्रुवेशु यह, यहाँ जो संसार में अनित्य पदार्थ है इनमें से वह किसी की इच्छा नहीं करता, प्रार्थयन्ते अर्थात इच्छा नहीं करता, प्रकृष्ट अर्थना को बोलते हैं प्रार्थना, अर्थना अर्थात चाहना, इच्छा करना, तो प्रकृष्ट इच्छा वह इन सब वस्तुओं की नहीं करता है, न प्रार्थयन्ते। तो पराचा जो बाहर ही ले जाकर हमें फेंक देते हैं वो पराचा कामान, और पराचा में आप अपने मन बुद्धि को भी लेना और देह को तो लेना ही लेना। एक बार यदि देह के अध्यास को आप छोड़ पाते हैं तो आपको आगे का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है, आप बात को समझने भी लगते हैं। तो कहा कि ये ध्रुवम अध्रुवेश न प्रार्थयन्ते, तो विषयों का पीछा, कामनाओं का पीछा करते रहते हैं। क्यों पीछा करते हैं, ये मनुष्य दौड़ रहा है, भाग रहा है, भागम भाग मची हुई है, क्यों, भय से प्रेरित होकर, काम से प्रेरित होकर, लोभ से प्रेरित होकर, क्रोध से प्रेरित होकर। आपका प्रेरक कौन है, केनेशितम पतति प्रेषितम मना, आपका प्रेरक कौन है, किससे प्रेरित होकर और आप दौड़ रहे हैं, किससे प्रेरित होकर दौड़ रहा है ये मनुष्य। यहाँ श्री महाराज जी ने अपना एक स्वप्न सुनाया, इस समय वर्तमान में भी वह ज्यों का त्यों लागू है, तो उन्होंने जैसे सुनाया वैसे हम नहीं भी सुना पाए, लेकिन थोड़ा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी बोले कि हमने एक सपना देखा, अमुक गांव के नाम सब दिए हैं उन्होंने, तो कहा अमुक गांव है और वहां पर वो कस्बा है, वहां पर ब्राह्मण पूरा मोहल्ला है, वहां हम बैठे हुए हैं स्वप्न में, तो कुछ लोग आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, किस लिए आए हैं? तो कहा वो वोट चाहते हैं। किस लिए आए? तो कहा वोट चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि वोट वो किस लिए चाहते हैं? क्या वो गौ हत्या बंद करेंगे? तो दूसरी आवाज आई, वो वोट चाहते हैं। तो फिर पहले जो व्यक्तियों ने कहा था उसके बाद आवाज बदलती गई है। तो कहा स्वप्न है भाई? तो कहा कि वो वोट चाहते हैं। तो कहा कि क्या वो गौ हत्या बंद करेंगे? तो कहा कि नहीं, वो नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे वो कुछ मालूम नहीं है। तो फिर कहा किस कारण से वोट चाहते, माने उनका कोई मुद्दा क्या है, ऐसा तात्पर्य है वहां। तो कहा कि वो वोट चाहते हैं। तो कहा कि वो उनका जो पक्ष है वह क्या है, उनका पक्ष क्या है? तो कहा कि वो वोट चाहते हैं। तो फिर एक डांट कर आवाज आई, महाराज जी वहां लिखते वो ईश्वर की आवाज थी, वो कुछ नहीं चाहते, वो कुछ करेंगे नहीं, वो केवल वोट चाहते हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, वो केवल वोट चाहते हैं। अर्थात उनके वो ना धर्म की सेवा करेंगे, ना समाज की सेवा करेंगे, ना सिद्धांत की सेवा करेंगे, किसी की सेवा वो नहीं करेंगे, वो केवल वोट चाहते हैं। अर्थात ये कौन है? वोट का अर्थ क्या है? स्वार्थ, स्वार्थ। और वो उनका व्यक्तिगत सुख चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए, व्यक्तिगत भय से वो प्रेरित है। उनकी दृष्टि में ना राष्ट्र है, ना समाज है, ना देश है, कुछ नहीं है। तो ये कौन है? कहा बालाहा। श्री महाराज जी कहते हैं ये कौन है ये लोग? तो कहा बालाहा, पराचा कामान अनुयंती बालाहा और मृत्योर समृत्योर गच्छन्ति। वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहते, ते मृत्यु आगे आएगा, यहाँ तो क्या है, ते मृत्योरियंती विततस्य पाशम। मृत्यु के जाल में जो दृश्य रूप मृत्यु है उसमें फंस जाते हैं। वो बुद्धिमान नहीं है, वो प्रज्ञावान नहीं है, वो केवल फंसे हुए। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि वो बालाहा हैं, अर्थात अल्प प्रज्ञा है, अल्प प्रज्ञाहा बालाहा, अल्प प्रज्ञाहा ते। वो क्या है? कहा छोटी छोटी बुद्धि वाले हैं। बालाहा किसको कहते हैं? तो कहा कि जो अज्ञानी होते हैं, इसका ज्ञान के साथ संबंध है, क्योंकि संस्कृत में ऐसे कहते हैं। एक तर्क संग्रह एक ग्रंथ है इसका, न्याय दर्शन का, तो उसमें कहते हैं बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बालकों को सुख से बोध कराने के लिए ये तर्क संग्रह हम लिखते हैं। तो उसमें उसका क्या है? तो कहा कि अधीत व्याकरण आदि शास्त्रों, न अधीत न्याय शास्त्र, अनधीत न्याय शास्त्रों बाला है। तो कहा कि व्याकरण आदि शास्त्र तो पढ़े हैं किंतु न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा, वो बालक है। अब जब आप व्याकरण पढ़ने जाएंगे तो वहां कहेंगे कि न्याय आदि पढ़े हैं पर व्याकरण नहीं पढ़े, तो वो बालाहा है, ऐसे वहां की शैली है। और दूसरे शास्त्र पढ़े हैं और आपने साहित्य नहीं पढ़ा तो कहेंगे कि बालाहा है, तो ऐसे वो बालाहा कहते हैं। तो उसका बालाहा का अर्थ क्या हुआ? उस विषय में उनका अज्ञान है। तो अज्ञान ही बालक का लक्षण होता है। बालक जो भी क्रिया चेष्टा करता है वह अज्ञान से, अबोध से प्रेरित होकर करता है, उसे प्रेरित होकर करता है। तो बालाहा तो कहा कि अल्प प्रज्ञा है। और मृत्यु हो तो मृत्यु क्या है? तो भगवान भाष्यकार अपनी पेटेंट, उनकी पेटेंट है, तो उनकी अपनी पेटेंट शैली में बोलते हैं मृत्यु अर्थात अविद्या काम कर्म। तो कहा कि अविद्या कर्म काम कर्म का जो समुदाय है उसी को बोलते हैं मृत्यु। अज्ञान है, बालाहा है इसलिए अज्ञान है, और अज्ञान है अज्ञान के कारण वो दृश्य को सत्य समझते हैं, उसके पीछे पीछे विषयों के पीछे दौड़ते हैं, उसमें उन्हें तृष्णा होती है अर्थात कामना होती है, और उस कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। जो आपको बताया कि भय से प्रेरित होकर, क्रोध से प्रेरित होकर, लोभ से प्रेरित होकर, ये सब काम के ही रूप हैं। काम ही इतने रूप धारण करता है, और काम के मूल में क्या है तो कहा अविद्या है, अज्ञान है, अपने स्वरूप को अपने स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए वो प्रेरित होकर करते हैं, काम करते हैं अविद्या से प्रेरित होकर। विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य, तो कहा कि वितत पात है मृत्यु का, अर्थात इसका विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पाश है, जहां जहां भी आप दृश्य को देखते हैं वहां मृत्यु लगी हुई है, वहां उसके साथ अदर्शन लगा हुआ है। आप कहें कि नहीं, इस दृश्य को हम आंखें फाड़ फाड़ के 24 घंटे देखेंगे, आप एक घंटे भी नहीं देख सकते। हिमालय में जाते हैं हम लोग, बोलते हैं आओ हमारे आश्रम में, और पीछे जब उतर के गंगा के किनारे जाओगे, बहुत एकांत है और शिवालिक हिमालय पर्वत की श्रेणी है, और गंगा खलखल करके बहती है, बड़ा सुंदर दृश्य है, पर कब तक देखोगे, कब तक देखोगे, बड़ा सुंदर दृश्य है, लेकिन आप उसको, उस दृश्य को, उस निर्मम दृश्य को आप मेरा नहीं बना सकते, आप उसका भोग नहीं भोग सकते, वो निर्भोग है क्योंकि ईश्वरीय है, तो वह निर्भोग है। और ये छोटी छोटी जो आपकी इंद्रियां हैं, वो छोटी छोटी इंद्रियों से आप बद्रीनाथ चले जाइए। अभी हम लोग सितंबर में थे बद्रीनाथ, वहां बड़ा भारी वेदांत का एक सम्मेलन था, तो बद्रीनाथ चलते वहां पर बड़ा सुंदर एक ऋषि गंगा ऐसे ऊपर से उतर के आ रही है, यहां से एक वो अलकनंदा आ रही है, वहां से सरस्वती आ रही है, बड़ा सुंदर दृश्य वो दृश्य, लेकिन कब तक देखोगे, भूख प्यास लगेगी, क्योंकि शरीर है ना, और ये शरीर मृत्यु से ग्रस्त है। बृहदारण्यक उपनिषद में अशनाया ही मृत्यु प्रारंभ में कहा, भगवान भाष्यकार ने भी उसको खोला, कहा कि अशनाया ही मृत्यु, जो भूख प्यास तुम्हें लगती है वह मृत्यु को लगती है, और ये शरीर मृत्यु रूप है। इसको आप आज कहें कि हम ब्रह्म विद्या के लिए इसे नहीं छोड़ सकते, हमारी इससे ममता है, इससे मोह है, तो भी ये शरीर आपका छूटेगा, हमारा भी छूटेगा, आप में हम भी सम्मिलित, तो ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, तो अच्छा है, एक दिन तो ही तजेंगे प्राणी, तू न तजय अभी ते, एक दिन तुम्हें छोड़ेंगे, तो अभी से क्यों नहीं इसको छोड़ने का आप अभ्यास करते हैं, अभी से क्यों नहीं करते। और ते मृत्योर एंति विततस्य पाशम, सर्वत्र मृत्यु का पाश फैला हुआ है, और वो क्या है, देह इंद्रिय, भाष्यकार भगवान बोलते हैं कि देह इंद्रिय आदि के संयोग वियोग रूप में, संयोग वियोग रूप पाश में जकड़े जाते हैं। देह और इंद्रिय का संयोग होता है, वियोग होता है, रात को आप सो जाते हैं, देह भी छोड़ जाता है, इंद्रिय भी छूट जाती है, स्वतः छूट जाते हैं, तो निरंतर इस पाश में पड़े रहते हैं, और सोचते हम इसको बना के रखेंगे, उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, डॉक्टरों का विचारों का धंधा ही चल रहा है इसलिए, क्योंकि हम इसको स्वस्थ बना के रखना चाहते हैं, अच्छी बात है रखिए। तो कहा कि निरंतर जन्म मरण, जरा और रोग आदि बहुत से अनर्थ समूहों को प्राप्त होते रहते हैं, मृत्यु यंति विततस्य पाशम में भाष्यकार भगवान इस प्रकार कहते हैं। तो ये तो जो अविवेकी है उनकी कथा सुना दी गई, और जो विवेकी है उनकी कथा कहते हैं। अथ धीरा, जो तो क्या होते अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, और जो धीर हैं, विवेकी हैं, अर्थात प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थिति रूप हैं, वो अमृतत्व को जानते हैं, विदित्वा उसको जानते हैं, उस निश्चल तत्व को, उस शाश्वत तत्व को, उस ध्रुव तत्व को वो जानते हैं। तो कहा कि देखो जो देवता आदि का अमृतत्व है वो तो अध्रुव है, पर यह जो प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थिति है यह हमेशा रहने वाला है। तो कहा कि विकार के हेतु जब आते हैं चित्त में भूत भविष्य की कल्पना आदि, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा। विकार के हेतु आने पर भी जिनका चित्त विकार को प्राप्त नहीं होता है उसको, उस महापुरुष को धीर कहते हैं, उन्हें धीर कहते हैं। और यह जान सकता है और विदित्वा इसने यह तत्व को जानता है, क्योंकि यह इस मृत्यु के पाश में अविद्या काम और कर्म, कामना से प्रेरित होकर कर्म करना इस पाश में बंधता नहीं है, क्योंकि अज्ञान को वह छोड़ रहा है। आप ऐसे नहीं समझना कि एक दिन एक चोट में आपका, आपके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, हो जाएगी, वो भी हो जाएगी जब केवल आवरण मात्र रहेगा। तो वह इस प्रकार से बताते ही हैं कि चुटकी में ज्ञान होता है, लेकिन अभी हम जहां बैठे हैं हम वहां से चलेंगे। तो आप यह विचार कर लें कि हम विचलित नहीं होंगे, जो भी परिवर्तनशील में परिवर्तन होता है, तो हमने जब बुद्धि से समझ लिया कि जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन होगा ही, तो उसमें हम विचलित नहीं होंगे। तो विदित्वा की ओर आप चल पड़े, उस तत्व को जानने की ओर आप चल पड़े, आपका संपूर्ण जीवन तन्मय होना चाहिए, साधना में कह लो। तो ये अंतरंग जो साधना है यह आपके जीवन में जब प्रस्फुटित होने लगती है, यह आपके जीवन में जब आने लगती है, तो आपका जीवन ही निर्भार होने लगता है। और ये निर्भार जीवन, इसी को बोलते हैं सन्यासी का जीवन। सन्यासी का जीवन अर्थात निर्भार जीवन। तो आप किसी दृश्य को लेकर अपने सिर पर बोझ न लें। जो अहंकार है वो अहंकार भले ले, लेकिन आप न लें। अहंकार बोझ लेता है। तो अहंकारी, क्योंकि अहंकार वो अविद्या काम से प्रेरित होकर, और मैं यह करूंगा, मैं यह करूंगा, यह कर लूंगा, वह कर लूंगा। एक साधक है आश्रम में, वो बोलते हैं हमने यह किया, हमने यह किया, और इसको हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है भाई, क्रेडिट ले लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो मृत्यु है। तो मृत्यु उसका, तो कहते हैं भाष्यकार भगवान यहाँ बृहदारण्यक श्रुति उद्धृत करते हैं, न कर्मणा वर्धते नो कनियान। धीर कौन है? तो का एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियान। ये ब्रह्मज्ञानी की यह महिमा है कि वह किसी कर्म से न बड़ा होता है न छोटा होता है। कि हमने यह कर लिया तो हम अब बड़े हो गए। ऊपर एक जगह श्री उड़िया बाबा जी महाराज गए एक सभा में, तो उनको बिठा दिया ऊपर, समय तो हो गया अभी। तो कहा कि एक जगह उनको, आप लोग सुने हुए हैं ये सब दृष्टांत, तो सनातन धर्मी और आर्य समाजियों का थोड़ा खटपट चलती थी उन दिनों, अब नहीं है। तो बाबा को सनातन धर्मियों ने ऊपर बिठा दिया और वो आर्य समाजियों का भी मंच था। तो वो लोग आए तो कहा कि अरे ये सन्यासी महात्मा को यहाँ ऊपर क्यों बिठाया, इसको नीचे बिठाओ, तुम लोगों का होगा महात्मा, हम लोग सबको समान मानते हैं, सब मनुष्य समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो बाबा नीचे बैठो, बाबा उतर के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा इस युग के महापुरुष है, इनको ऊपर बिठाओ। तो झगड़ा करने लगे, बाबा ऊपर बैठ गए, फिर बाबा नीचे बैठ गए। कई बार ऊपर बैठे नीचे बैठे, तो कहा कि देखो, तो किसी ने कहा कि बाबा आपको कुछ परेशानी नहीं होती, ऊपर बैठ जाते हो नीचे बैठ जाते। बोले ऊपर बैठो चाहे नीचे बैठो, एक ही बात है, देह को बिठाना कहीं भी बिठा दो, ऊपर बिठाओ चाहे नीचे बिठाओ। और श्री उड़ियावास जी महाराज के आश्रम में यह एक नियम था कि केवल वक्ता ऊपर बैठेगा और बाकी सब चाहे महात्मा हो चाहे बड़े से बड़े महात्मा हो, स्वयं बाबा नीचे बालुका में बैठ के और सत्संग सुनते थे अपने शिष्य हमारे श्री महाराज जी का, नीचे बैठ के सुनते थे। तो ऐसा न कर्मणा वर्धते नो कनियान, इससे न कोई महिमा बड़ी होती है न छोटी होती है, और ये कर्म से कुछ बढ़ता नहीं है न घटता है। ऐसा जो अमृतत्व है, कूटस्थ है, अविचलित है, उसको जानकर ये सब इन पदार्थों में इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम, उस अचल तत्व को जानकर ये चलायमान जो वस्तु है इनकी इच्छा वह नहीं करता है। पुत्र वित्र लोकेशना, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, इसको वह छोड़ देता है, इससे वह दूर हो जाता है, वह निर्भार जीवन जीता है, वह सन्यासी का जीवन जीता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ॐ शान्ति शान्ति।